अब चंद छोटी छोटी बातें जो फायदे की खातिर आपसे डिस्कस की जा सकती हैं, इसमें तंबीहात है। नंबर एक, साबित शुदा आसानियों के मुतल्लिक तरद्दुद ना करना। ये एक जनरल मिजाज दीन का समझिएगा। अल्लाह ताला ने दीन हक को आसान बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी करने वाला मुअल्लिम बनाकर मबूस फरमाया। इनके नाजिल करदा और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा शरई अहकाम में सहूलतें हैं। इस दीन पर ईमान रखने वाले किसी भी शख्स के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं कि वह अपने ख्याल में मुत्तकी बनने और ज़्यादा अजर व सवाब हासिल करने की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा आसानियों के बारे में तरद्दुद करे। बस आप देखिए कि इनमें से कोई एक आसानी आप ले लीजिए ना, जैसे यहाँ औरतों से मुतल्लिक है कि अगर महरम नहीं है तो आसानी है कि हज फर्ज नहीं। कोई कहता है नहीं जी, हम फिर भी करेंगे और एहतियात के लिए करेंगे और इसमें ज़्यादा अजर मिलेगा, तो अजर की बात नहीं है, बात मानने की अजर। आपने वो वाक्य सुना होगा कि एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम ने सहाबा को किसी सरिया में भेजा, यानी किसी जगह जाना था दुश्मन का मुकाबला करने, और सबको कहकर आप नमाज में खड़े हो गए, नफिल नमाज पढ़ रहे थे आप। आपने सलाम फेरी तो देखा पीछे एक साहबी खड़े हैं, वो भी आपके साथ नमाज पढ़ने लग गए हुए थे। आपने पूछा आप इधर क्यों हैं? कहा अल्लाह के नबी मेरी सवारी बड़ी तेज़ है और मैं बाद में भी निकलूंगा तो मैं उनको मिल जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा सा थोड़ी देर रुक जाऊं, आपके पीछे नमाज का अजर भी ले लूं और फिर उसके बाद उस काफिले से मिलूं, यानी मुझे दोहरा सवाब होगा। तो आपने फरमाया कि नहीं, वो जो चले गए अब तुम उनके अजर को कभी नहीं पा सकते। देखिए इसको आप अपने ऊपर समझिए, आपका बच्चा आपकी पहली आवाज़ पर ना उठे कितना गुस्सा आता है, फिर बाद में घंटे बाद चाहे वो एक ही जगह दो गिलास पानी के लिए आए आपको गुस्सा आएगा। असल चीज़ इतात है, समा बसर हमारे दीन का एक बहुत बुनियादी पिलर है समा बसर, और इसकी कमज़ोरी बड़े बड़े सिस्टम्स को ख़राब कर देती है। और जब इंसान के अंदर खुन्नस भरा होता है ना, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की बात भी नहीं मानता। खैर खैर है, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी मौलवी साहब बोले अभी बड़ी देर है नमाज में, ये जब नमाजें डिले करते हैं ना, अच्छा अभी नहीं, अभी घर जाके पढ़ूंगी, अच्छा घर के, अच्छा हंडिया चढ़ा दूँ, अच्छा हंडिया चढ़ा दी, अच्छा चावल धो लूँ, ये कर दूँ, करते कराते आखिर में वो नमाजें फिर उस अजर की नहीं हो सकती जो कि पहली पुकार पर अजर है। तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ हज से लेकर आनी है आपने इंशाल्लाह, सुन के पीछे नहीं डालना। हर इंसान अपने लिए भी ये पसंद करता है कि मेरी बात सुनकर कोई फौरन मान जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी उम्मती की राय की बिना पर साबित शुदा आसानी से एराज की गुंजाइश ना होना। यानी जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कॉल फेल से साबित हो गई है, अब आप उसके ऑपोजिट या उसके अगेंस्ट कोई किसी का कॉल किसी का फतवा पेश नहीं कर सकते, चाहे वो बहुत बड़ा कोई इमाम हो कोई उस्ताद हो। ये अल्लाह ताला के नबी का हक है कि उनकी बात को मनोअन माना जाए। किसी मुसलमान के लिए ये जेबा नहीं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा आसानी को किसी आलिम फ़कीह मुहद्दिस या इमाम की राय की बिना पर रद्द कर दे। ये सारे हजरत अपनी शान व अजमत के बावजूद उम्मती हैं और किसी भी उम्मती की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा सुन्नत को छोड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझिएगा, आज उम्मत चार टुकड़ों में बटी हुई है ना। कुछ कहते हैं हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के कॉल की इत्तबा करते हैं, कुछ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के, इमाम अहमद के, और इसी तरह बाज़ लोग इमाम मालिक के मुक़लिद हैं। एक जुमला सुनिए फिर उसको बाद में जाके हज़म कीजिएगा। हदीस के मुकाबले में कॉल मानना ये दुरुस्त नहीं है, बात समझ गए। जिनको लोग अहले हदीस कहते हैं ना, वो कोई एक मसलक एक फ़िरका एक जमात एक ग्रोह है कि नहीं, उसको पीछे कर दें। हम किसी के दिफा या किसी की रिजेक्शन में बात नहीं कर रहे, बट वो जो पैगाम देते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हदीस के मुकाबले में कॉल नहीं मानना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा बात हदीस मिल गई, उसके बाद फिर हम उसके मुकाबले में उमर फारूक के भी कॉल को नहीं मानेंगे, अबू बकर का कॉल भी नहीं मानेंगे, कहाँ फिर बाद के लोगों के कॉल। हत्ता कि जो चारों आइम्मे कराम गुजर चुके हैं, वो खुद अपने बारे में कह कर गए कि हमने जो बात पेश की है अपनी समझ और अपने इल्म के मुताबिक पेश की है, कभी अगर तुम्हें हमारे किसी कॉल या फतवे के मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस मिल जाए तो हमारा फतवा या कॉल दीवार पे मार दो और हदीस ले लो। यानी कह लीजिए कि चारों आइमाए कराम खुद हदीस के मुकल्लत है, लेकिन लोग आज मोहब्बत में या कह लीजिए कम इल्मी में उन्हीं को मुकाबले में पेश कर देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत के। तो अल्लाह ताला हमें तासुब से बचाते हुए ऐसा ही मुस्लिम बना दे जैसे कि सहाबे कराम थे। तीसरी चीज़ देखिएगा, सुन्नत से साबित शुदा आसानियों की तकसीम को पेश नज़र रखना। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा आसानियों में से पहली किस्म इन सहूलतों पर मुश्तमिल है जिन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, जैसे कि मीकात से पहले अहराम बांधना, हालत अहराम में गुसल करना। दूसरी किस्म इन सहूलतों पर मुश्तमिल है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इजाज़त तो दी लेकिन खुद इन्हें इख्तियार नहीं फरमाया, जैसे कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहज के चारों अमाल में खुद तरतीब को बरकरार रखा लेकिन इनमें तकदीम व तखीर की इजाज़त दी। इस तकसीम को पेश नज़र रखते हुए पहली किस्म की आसानियों के मुतल्लिक ये समझ लिया जाए कि इनके करने में अजर व सवाब में किसी किस्म की कोई कमी नहीं। दूसरी किस्म की आसानियों के बारे में यह हकीकत जहन नशीन कर ली जाए कि इन्हें इख्तियार करने में ना गुनाह है और ना ही फिदिया, अलबत्ता ज़्यादा अजर व सवाब वही करने में है जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई। आसानियों के हवाले से इस तकसीम को पेश निगाह रखना मुफीद और ज़रूरी है। ये पॉइंट समझ आए आपको? यानी गोल और हदफ क्या होना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी ने किया वो करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर उसमें इंशाअल्लाह ताला मतलब हमें गुनाह नहीं होगा, लेकिन दी बेस्ट का गोल तो बनाना चाहिए ना, ये मुराद है। ठीक है, और चौथी बात क्या कि आसानियों की आड़ में दीन में तहरीफ से दूर रहना, ये बहुत अहम चीज़ है। नबी सल्लम का नाजिल करदा आसानियों समेत पूरे का पूरा दीन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुंचा दिया। अब किसी को हक नहीं कि वो सहूलत और आसानी की आड़ में दीन की साबित शुदा बातों में तोड़ मरोड़ शुरू कर दे, यानी ये कहना शुरू हो जाए कि चलो भाई ये भी जायज़ है वो भी जायज़ है, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखिए कि आखिर में इन्होंने चंद रिक्वेस्ट हैं और वो क्या हैं कि आप इस इल्म को आम करें। बहुत सारे लोग हैं बेचारे मुश्किलों में पड़े होते हैं, तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, आप जैसे ये बुक है, ये ऑडियो है, आप इसको आम लोगों तक पहुंचाइए, किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं और वो ऐसे मसाइल ख़ुद भी सुने और समझें। आप लोग यहाँ से ये बुक साथ लेकर जाएं, एक्स्ट्रा कुछ वहाँ जाकर इसको दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। यानी अगर आप पांच पांच बुक्स अपने पास हर एक ले जाता है तो वहाँ कई लोग यकीन करें आपको दुआएं देंगे। अगर बैठे तो 1 घंटे में पूरी बुक का पढ़ सकते हैं ये खुलासे के तौर पे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि दूसरों की दुआएं भी मिलेंगी आपको और जो दूसरे बेचारे मुश्किलों में पड़े हुए हैं वो आसानियों में ढल जाएंगे। फिर इसी तरह से ये है कि किसी साबित शुदा आसानी से इसलिए रूगरदानी ना करें कि वो इनके या किसी और के तकवा के खुद साख्ता मेयार के मुनाफी या किसी उम्मती की राय से टकराती है, क्योंकि सबसे मजबूत और तकवा वाली बात नबी सल्लम की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। असल में ये किताब 403 सफ़ों की है, अगर आप वो पूरी पढ़ते तो आपको हो सकता है 15 दिन भी लग जाते, लेकिन जितने भी हमने बातें की ना इन सब की दलाइल मौजूद हैं, वाक़यात मौजूद हैं, किस मौके पे क्या बात हुई, यानी एक एक चैप्टर 25, 30, 30, 40 सफ़ों का भी है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक जो मसला समझ आना था वो आपको आ चुका है। अगर आप ये बुक लेना चाहें तो आपको ऑनलाइन पे भी मिल सकती है, खुद अपने मुताले के लिए पढ़ें, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारे मसाइल आ गए हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये पूरा हुआ टॉपिक। इसमें यह है कि अब कुछ चीज़ें जो आपके लिए मैं जनरल थोड़ी सी शेयर कर सकती हूँ कि जिससे आप अपने इस सफ़र को मज़ीद नेकियों वाला भी करा सकती हैं और आपके दिल में कोई हसरत ना रहे ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोगों की ख्वाहिश तो होती है हम करें, लेकिन चूंकि उस वक्त से पहले हमें कोई नहीं बताता, लेकिन जब हम उस चीज़ को वक्त से पहले समझ जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो उससे इंशाअल्लाह ताला हम उसको बेहतरीन तरीके से लेते हैं।